नमस्कार। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही किसानों के कर्जे माफ कर दिए, साथ ही में ये भी कहा कि जो मध्य प्रदेश की कंपनियां हैं उनको रियायत दी जाएंगी अगर वो मध्य प्रदेश वालों को नौकरियां दें। उनका कहना है कि यूपी और बिहार के लोग ज़्यादातर नौकरियां ले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर माइग्रेशन जो होता है वो यूपी और बिहार से ही होता है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर उनको अपने ही राज्य में, अपने ही प्रदेश में अच्छी नौकरियां मिलती होती तो अपना घर छोड़ना कौन पसंद करता है। ये भी सच है कि माइग्रेशन इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हर कोई माइग्रेट करता है, मौसम के हिसाब से करता है। मुझे याद है मैं मॉरिशस गया था एक दफ़े, तो वहाँ जो भारतीय हैं वो राज करते हैं, एक तरह से भारतीय मूल के लोग राज करते हैं, और उनके जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो यूपी, बिहार, उसके अलावा एक दो और राज्यों से आए थे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से, लेकिन मेनली यूपी और बिहार से आए थे। उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। जो आए थे वो लोग, वो गिरमिटिया मजदूर कहलाए, इंडेंचर्ड लेबर। उनको ये बताया गया कि मॉरिशस एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर तुम पत्थर उठाओगे नीचे से सोना निकलेगा। तो वो गरीब गुरबा बिहार के, यूपी के, हाथ में एक एक रामचरितमानस गठरी ये लेकर जब जहाज़ों पर सवार हुए, वो समुद्री जहाज़ों पर, तो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाए गए इंडेंचर्ड लेबर के। अब एग्रीमेंट उनके, वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, उसका उच्चारण नहीं कर सकते थे, तो एग्रीमेंट गिरमिट बन गया, तो गिरमिटिया मजदूर कहलाए। आज गिरमिटिया साहित्य अपने आप में बहुत बड़ी जगह रखता है। अभिमन्यु अनंत जैसे लोग मॉरिशस में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हाल ही में कतर से होकर लौटा हूँ। मैं अब कुवैत जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, जगह जगह गया हूँ, जहाँ जहाँ लोग माइग्रेट करके गए हैं, स्किल्ड, जिनके पास हुनर है, वो इसलिए गए हैं कि यहाँ उनको वो हासिल नहीं हुई सुविधाएं या उस तरह की ज़िंदगी नहीं दिखी जो उन्हें वहाँ मिल रही है। चाहे वो बड़े से बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री रघुराम राजन हो, या कतर में काम करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन हो। बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपना देश छोड़ के जाना या अपना प्रदेश छोड़ के जाना हमारे यहाँ की हकीकत है। और ये फिर देश तो सबका है। कमलनाथ जी को शायद ये नहीं मालूम कि अंग्रेज़ चले गए हैं काफ़ी अरसे से। हम लोग, हमारे परिवार जैसे, हम लोग आए जिस जगह से, वो अब पाकिस्तान में हैं, हमें तो मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि मुल्क अलग बन गया था वो धर्म के आधार पर। लेकिन बाकी तो भारत में कोई भी कहीं पर भी जाने को आज़ाद है, स्वतंत्र है, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बिल्कुल सारे मौके तलाश कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है इन दोनों राज्यों के नेताओं पर भी कि इन लोगों ने किया क्या, आखिर ऐसी हालत क्यों आई है कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी से चल रही हैं स्टेट्स, हर परिवार के एक या दो बेटे बिहार या यूपी से बाहर हैं, दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं। ये सुशासन बाबू कहलाते हैं खुद को, नीतीश कुमार, इन्होंने क्या कर लिया भाई जब से आए वो? 15 साल लालू यादव ने राज किया, क्या कर लिया इन्होंने? बिहार भारत की 6ठी या 7वीं सबसे बेहतरीन स्टेट हुआ करता था जब आज़ादी मिली थी। उसके बाद जो हाल नेताओं ने किया, जो हाल नीतियों ने किया उनकी, वहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, लिहाजा मजबूरी में लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में आना पड़ता है, काम ढूंढना पड़ता है। पहले एक आता है, किसी के साथ टिकता है, फिर दो और आते हैं, क्यों, क्या करें, मजबूरी है। जैसे मैंने पहले कहा, यही हाल विदेशों पर भी लागू होता है, और ख़ासकर गल्फ के देशों में जो छोटे हुनर के लोग हैं, जैसे छोटा हुनर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर पैसा साथ में लगाया जाए तो उनका तो हाल और भी बुरा है। मुश्किल से कर्जे लेकर, ज़मीन बेचकर, ट्रैवल एजेंट को पैसे देकर, वो वीज़ा लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही जो मालिक है उनका पासपोर्ट रखवा लेता है, उसके बाद जितना पैसा कहा जाता है उतना नहीं देता। जिस तरह के कैंप्स में वो रहते हैं, दुबई पर हमारे दोस्तों ने बहुत काम किया था, जिस तरह के कैंप्स हैं, एक एक कमरे में 8-8 लोग भी रहेंगे, एक एक कमरे में 8-8 लोग, एक टॉयलेट होगा, वहीं खाना भी बनेगा, इस तरह के हालात में रहते हैं। बिल्कुल यही हाल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई और दूसरे बड़े शहरों में जहाँ यूपी और बिहार से लोग आए हैं। एक एक कमरे में चार चार लोग, पांच पांच लोग, क्या करें, मजबूरी है। और नेता लोग हैं, अपने आप को सुशासन बाबू कहलाते नहीं थकते। लालू यादव भाषण देते नहीं थके थे, फिर हीरो बन जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स बताता हूँ। कमलनाथ को ऐसे में थोड़ा सा इसमें संवेदनशील होना चाहिए कि मजबूरी में लोग आते हैं, कोई अपना घर यूं ही छोड़कर नहीं आता। ये तो खुला न्योता है, जैसे महाराष्ट्र में किया गया था कि जो बिहार से लोग हैं, यूपी से लोग हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़ने का। बिल्कुल वैसे ही कमलनाथ साहब कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये अपने ही देश में हैं ये लोग। मैं आपको पुरानी फिगर्स कुछ बताता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो होता है 2017 का, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार से आधे माइग्रेंट्स, आधे ऐसे लोग पूरे भारत में, आधे लोग तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार से ही हैं जो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर नौकरी ढूंढने जाते हैं। सन 2001 में 22,40,000 लोग बिहार से माइग्रेट किए थे। सन 2001 ही में 38,01,000 लोग यूपी से माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में गए थे, शहरों में गए थे, रोजी रोटी की तलाश में। और नीतीश कुमार अब कह तो रहे हैं कि स्मार्ट विलेजेस टू स्टॉप पीपल फ्रॉम माइग्रेटिंग। आप स्मार्ट को छोड़िए, आप नौकरी के मौके ही पैदा कर दीजिए। आप अपनी जो राजनीति करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी लालू के साथ, अब मोदी के साथ, तो आप जो लोग मजबूरी में अपना घर छोड़कर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी और ईस्ट में भी, वहाँ पर भी इन लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी थी, तब लालू यादव वहाँ गए थे। ऐसे में हम सिर्फ यही कहेंगे कि कमलनाथ का ये कहना कि हमारे अपने लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही क्योंकि बाहर के लोग नौकरी ले जाते हैं, तो बाहर का अपना कोई नहीं है, ये भारत है, सबका है, हर एक को हक है, ये बात और है कि जो नेता हैं इन दोनों राज्यों के, पिछले 20 सालों से, 25 सालों से उन्होंने ऐसा निकम्मापन दिखाया है। हालांकि राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी से, जिसमें डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी ने स्थापित भी किया था कि बिहार के साथ ज्यादती हुई है, उसको एलोकेशन कम मिली है, लेकिन जितनी मिली भी है उसका किया क्या है वहाँ पर नेताओं ने, ये सवाल कमलनाथ से पूछने के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि वो एक संकेत चला जाए कि यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। सरकार को समझ लेना चाहिए कि रफाल पीछा नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो गलत बयानी हुई या शब्दों का हेर फेर हुआ, इज हैज़ बीन हो गया, जिसका जिम्मा सुप्रीम कोर्ट पर फेंका जा रहा है। सीएजी ने पहला ड्राफ्ट सरकार को कल दिया है, जबकि कहा यह गया कि जो सीएजी की रिपोर्ट थी वो पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके सामने रख दी गई है, उसने पढ़ ली है। जो पेज नंबर 95 और 96 हैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के, उसमें उन्होंने लिखा है जज साहिबान ने कि हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली है, प्राइसिंग की प्रक्रिया क्या होती है, सब कुछ क्या होता है, लेकिन ये हमारे दायरे में नहीं आता। अगर ये सब कुछ है तो आपने इसी आधार पर लिखा है ना कि ये जो रिपोर्ट है सीएजी की, ये पीएसी से शेयर कर ली गई है, उसको दे दी गई है, जब उसको दे नहीं दी गई। अब जब मांग उठ रही है कि एक जेपीसी बिठाई जाए इस पर, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो सरकार बहुत केजी हो रही है। केजी अंग्रेजी का लफ्ज़ है, माने जैसे उसके पास बहुत कुछ छुपाने को है। अरुण जेटली का जो फ्लिप फ्लॉप है, यू टर्न है जेपीसी को लेकर, वो अपने आप में एक बड़ी क्लासिक मिसाल है। अरुण जेटली का कहना है, शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कांग्रेस की मांग है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसको रिजेक्ट करते हुए, खारिज करते हुए कहा है कि ये रफाल डील को लेकर खारिज करते हुए रहा है कि फैमिली वॉज नॉट अबव सुप्रीम कोर्ट इन ए डेमोक्रेसी। वो फिर उनकी सुई हमेशा नेहरू गांधी परिवार पर ही अटकी रहती है, जैसे मणिशंकर अय्यर की सुई राजीव गांधी पर अटकी हुई है अभी तक, तो अरुण जेटली की सुई भी नेहरू गांधी परिवार पर ही अटकी रहती है। अब इसमें फैमिली कहाँ से आ गई मालूम नहीं। फैमिली वॉज नॉट अबव द सुप्रीम कोर्ट इन ए डेमोक्रेसी, जेटली सेड द एपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट वाज एब्सोल्यूट एंड कंक्लूसिव, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल मुकम्मल है और आखिरी है। एंड द ट्रूथ इन सच मैटर्स, आई एम कोटिंग हिम नाउ, द कोर्ट बिगिंस एंड आई कोट, ट्रूथ इन सच मैटर्स कम फ्रॉम जुडिशियल प्रोसेस, ऐसे मामलों में जो सच्चाई होती है वो अदालत की प्रक्रिया से ही आती है एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पोलिटिकल पार्टीजन लाइन्स, और इस आधार पर नहीं आती कि जो जेपीसी के मेंबरान होते हैं, अलग अलग पार्टी के होते हैं, उनकी अलग अलग पोजीशन होते हैं, तो सच वहां से नहीं निकलता। इन्वेस्टिगेशन कैन नेवर बी डन एंड रिव्यूज ऑफ दिस कैन नेवर बी डन बाय बॉडी ऑफ पार्टिजन डिवीजन। अब जेपीसी को वो बॉडी ऑफ पार्टिजन डिवीजन कह रहे हैं कि जो तहकीकात होती है और सच पर पहुंचने का जो पूरी प्रक्रिया है वो लोग नहीं कर सकते जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं और जेपीसी में बैठते हैं। सच सिर्फ अदालत से ही निकल सकता है, ये उनका फ्राइडे का कहना है। ये अरुण जेटली का कहना है, जब 2G स्कैम हुआ था 2010 की बात है, जिसको लेकर भी काफ़ी कुछ पलट गया है। 2G स्कैम को लेकर अरुण जेटली ने कहा था, एक्सेप्टिंग द डिमांड फॉर ए JPC इज द ओनली वे आउट ऑफ द करेंट क्राइसिस। तब ये लोग विपक्ष में थे, कि JPC की जो मांग है उसको मानना इकलौता रास्ता है इस संकट से निकलने का। द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू हैव फेथ इन दीज इंस्टीट्यूशंस। सरकार हमसे उम्मीद नहीं कर सकती कि हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे इदारे, हम उन पर भरोसा रखें। शायद उनका आशय अदालत से था, सुप्रीम कोर्ट से था या नहीं था, इसमें स्पष्ट नहीं है। इज द पार्लियामेंट गोइंग टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर ऑन दिस? क्या हमारी जो संसद है, क्या वो मूक दर्शक बनी रहेगी? दिस शोज देर आर क्लियर इश्यूज ऑन गवर्नेंस एंड JPC इज द ओनली सोल्यूशन। इससे जाहिर होता है कि शासन चलाने को लेकर कुछ सवाल हैं और सिर्फ JPC ही उनका जवाब दे सकती है। द UPA लीडरशिप, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, द UPA लीडरशिप मस्ट सीरियसली एग्री टू विद JPC। UPA लीडरशिप को तुरंत JPC की मांग मंजूर करनी चाहिए, JPC बनानी चाहिए, सो दैट द एंटायर ट्रूथ कैन कम आउट। यहां पर एंटायर ट्रूथ JPC से बाहर आ रहा है, और परसों शुक्रवार को जो बोला उसमें एंटायर ट्रूथ सिर्फ अदालतों से आ सकता है, JPC से नहीं आ सकता, क्योंकि वहां अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं। जेटली साहब, आप तय कर लीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं, अदालत या JPC? नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।